ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் ஈஷா வாசியோபனிஷத், பிரசன்டட் பை சுவாமினி சந்தோஷி மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
தேஜோ யத் தத்தோ ரூபம் கல்யாணத்தம் தத்தோ பஷ்யாமி யோ வாசோ. மே உஸ் ஆதித்ய மண்டல் ஸ்தித் புருஷ் ஜோ மே ஹூ, மே உஸ்கா தர்சன் கர் சகூ, உஸ்கே லியே ஆப் உஸ்மே ஸ்தித் ஹூ, ஔர் உஸ்கே லியே ஜோ யே தேஜ் ஆப்கீ ரஷ்மியா ஹே, ஜின் கிரணோ கே காரண் மே உஸே நஹீ தேக் பா ரஹா ஹூ, ஆப் அப்னீ இன் கிரணோ கோ ஹடா லீஜியே. இஸ் பிரகார் பரமாத்மா சே பிரார்த்தனா கீ, ஔர் பிரார்த்தனா கர்னே கே உபராந்த் வாயுர் அனிலம் மிருதம் ததேதம் பஷ்மாந்தம் சரீரம். ஓம் க்ரதோஸ்மர க்ரதஸ்மர க்ரதோஸ்மர க்ரதஸ்மர. வாயுர் அனல் பகவான் சே பிரார்த்தனா கர்த்தே ஹுவே கஹா கி மேரா ஜோ வாயு சூத்ராத்மக், பகவான் சே பிரார்த்தனா கி அப் மேரே பிராண் சர்வாத்மக், ஜோ பிராண வாயு ஹே உபலக்ஷித் ஔர் சூக்ஷம சரீர் மே ஜாக்கர் ஏகத்வ கோ பிராப்த ஹோ, ஔர் இஸ் பிரகார் அம்ருத்வ சூத்ராத்மா கே சாத் லிங்க சரீர் ஜிசே ஹம் கேதே ஹே சூக்ஷம சரீர் கே த்வாரா ஜோ பிராண வாயு ஹே வோ சூத்ராத்மக் சூக்ஷம உஸ் கே சாத் ஏகத்வ கோ பிராப்த ஹோ, ஔர் சூத்ராத்மா ஜிசே கேதே ஹே உஸ்கே சாத் ஏகத்வ கோ பிராப்த ஹோ, ய ஜோ ஸ்தூல சரீர் ஹே ये भस्म हो जाए और मेरे संकल्प रूपी मन तो स्मरण कर. बोले किसको? ओम को स्मरण कर. ओम परमात्मा का दिव्य ओम इत्यक्षर ब्रह्म कहा गया है. ओम ही साक्षात परात्पर परब्रह्म परमात्मा है, इसलिए ओम का स्मरण कर. ओम का स्मरण कर और अपने किए हुए का स्मरण कर, तू स्मरण कर अपने किए हुए का स्मरण कर. माने भगवान के इस नाम का स्मरण करते हुए, ओम इस अक्षर का स्मरण करें. यम यम वापि स्मरणम भावम तज्जन्ते कलेवरम, गीता में भगवान कहते हैं जो जैसा जैसा स्मरण करता हुआ इस शरीर को छोड़ता है उसको वैसी वैसी योनि की प्राप्ति होती है, वो उसी प्रकार के शरीर को प्राप्त होता है. पृथ्वी में चलते हुए एक नियम है कि पहला पांव उठाएं उससे पहले, जब पिछला पांव उठाएं उससे पहले हम अगले पांव को पृथ्वी में जब जमा लेते हैं तब पीछे का पांव स्वतः उठ जाता है. उसी तरह से जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करने से पहले वह दूसरे शरीर को जब स्वीकार लेता है तो तब वह इस शरीर को छोड़ता है. ऐसा कहा जाता है कि इस शरीर के त्यागने से पहले सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म दूसरे शरीर को वो ग्रहण कर लेता है, पकड़ लेता है. बोले दूसरे शरीर को क्या पकड़ता है? जो उस समय उसके अंदर स्मरण होता है, यंगम स्मरण भावेन, उस समय जैसा जैसा जिसका स्मरण होता है उसके लिए बड़ा सुंदर उदाहरण है भागवत में महाराज जड़ भरत का स्मरण. भरत राजर्षि थे और सब कुछ छोड़ करके, सब राजपाट सभी कार्य छोड़ करके, राजसी भोजन आभूषण प्रसादन सब का त्याग करके एक ऋषि के समान गंडकी नदी के किनारे में जाकर रह रहे हैं, भगवान शालिग्राम की सेवा कर रहे हैं, भगवान का भजन पूजन कर रहे हैं और उनका समय भगवत आराधना में व्यतीत होता है. एक दिन की घटना है कि महाराज भरत गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे तो उनके स्नान करते हुए एक जंगल से हिरणी वो भी जलपान करने के पानी पीने के लिए उसी नदी के किनारे आए और जैसे वो जल पी रही थी इतने में बड़ी जोर से सिंहनाद हुआ जंगल में, शेर की गर्जना हुई और जैसे शेर की गरजने की ये बड़ी सी आवाज उन्होंने उसने सुनी तो हिरणी चौंक गई, भयभीत हो गई, डर गई और इस भय से भयाक्रांत होकर भयभीत होकर उसका गर्भ स्वखलित हो गया और वो इस प्रसव पीड़ा में पीड़ित होकर भय के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गई। छोटा सा मृग का बालक जो नवजात है, अभी अभी जिसने जन्म लिया है, महाराज भरत ने उस मृग के शावक को बिल्कुल अनाथ समझा। इसका इस समय कोई इसकी रक्षा करने वाला नहीं है, बिल्कुल अनाथ है। अनाथ जान करके महाराज ने उसे, उस बालक को पकड़ लिया, गोद में लिया, अपने हृदय से लगाया, अपने देह की गर्मी को देकर उस बालक के प्राणों की रक्षा की और उसे आश्रम में ले आए और लाकर उसने बड़े लाड़ प्यार के साथ धीरे 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 उसे निराश्रित जान करके पहले दैन्य भाव आया, दया का भाव आया और ये दैन्यता धीरे 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 कब आसक्ति में बदल गई, रूपांतरित हो गई, आसक्ति बन गई। अब तो उस बालक का लालन पालन करने लगे। परिणाम तो ये हुआ कि एक दिन जंगली हिरण का झुंड उधर से निकल रहा था, अपने सहजाती मृगों को देखकर ये मृग शावक भी उनमें मिल गया और दूर निकल गया। परंतु महाराज भरत के अंदर बार बार उस मृग शावक का ही चिंतन चलता रहा। बुद्धि में उसके लिए तरह तरह के विचार उठते गए और इन विचारों की उहापोह में थे कि उसी बीच उनका शरीर छूट गया तो अंत में उनको मृग का शरीर मिल गया। तो इसीलिए भगवान कहते यंग्यं वापि स्मरणं भावम्, जो जिस भाव से जैसे जैसे स्मरण करता है, जैसे जिसका अंत समय का स्मरण होता है, उस स्मरण के साथ तक्त कलेवरम शरीर को छोड़ता है, उसी भाव के अनुसार वह देह को ग्रहण कर लेता है, शरीर को पकड़ लेता है। इसलिए अंत समय में, अच्छा अंत की बात यह है नारायण कि हमारा अंत कब है, ये कभी किसी को पता है कि अंत कहा अंत समय में? तो अंत से मतलब हम सोचते हैं अभी तो अंत में बहुत लंबा टाइम है, अभी तो 10 20 50 साल बाकी है, अभी तो हम उसके लिए बहुत लंबा समझते हैं। परंतु याद रखना, हर सांस के अंत में उसको जीवन का अंत समझते हुए, हर क्षण हर श्वास प्रश्वास के साथ जो सांस ले ली गई है वो भूत में बदल गई है, जो सांस लेंगे वो अभी भविष्य के लिए है, लेंगे या नहीं लेंगे उसके लिए भी हम कुछ कह नहीं सकते, पर जो सांस अभी हमारे अंदर है वो वर्तमान है, वो सांस वर्तमान। इतना ये सोचे, वही सांस जो वर्तमान है, वो सांस भर जितनी देर वो सांस हमारे अंदर है उतनी देर वर्तमान है। इसलिए महात्मा लोग कहते हैं भैया हर श्वास में न जाने किस समय इस शरीर का अंत हो जाए, उसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता है नारायण, कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो इस प्रकार हमेशा भगवान का इस पर मुझे एक बात नामस्मरण की पर याद आ रही है भगवान की, कि हरिदास जी महाराज को भगवान के नाम के स्मरण का बहुत अभ्यास था और इतना भगवत स्मरण करते थे कि स्मरण करते करते उन्होंने साक्षात ठाकुर बांके बिहारी को प्रकट ही किया था। धीरे धीरे अवस्था उनकी बढ़ गई, ये वृंदावन की सत्य घटना है। जब उनकी अवस्था शरीर की वर्ग बड़ी हो गई, अब शरीर को सेवक की आवश्यकता महसूस होने लगी। शरीर को कोई सेवक की आवश्यकता महसूस होने लगी, पहले तो वो स्वयं अकेले रहकर भगवान का भजन करते थे, महात्मा थे हरिदास जी महाराज, परंतु जब उनका शरीर वृद्ध हो गया तो एक दिन एक ब्रजवासी बालक आकर के उनके सामने खड़ा हो गया और कहा, बाबा आप मुझे अपने सेवा में रखेंगे, मैं आपकी सेवा का कार्य करना चाहता हूं। और उनको भी सेवक की सेवक आवश्यकता महसूस हो ही रही थी, उन्होंने सेवा के लिए उस बालक को अपने लिए नियुक्त कर लिया। बालक बड़े प्रेम से बाबा की सेवा करता है, उनका कोपीन धोता है, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करता है, उनके लिए पूजा का सामग्री की तैयारी करता है। इस प्रकार कार्य चलता रहा, सेवादारी निभाता रहा, सेवक का धर्म पालन करता रहा ये ब्रजवासी बालक। एक दिन की घटना थी कि महात्मा का पेट गड़बड़ हो गया, पेट में कुछ विकार हो गया और पेट में विकार होने के कारण वो दीर्घ शंका के लिए जब गए तो इतनी जल्दी में गए कि वो बालक पीछे से पानी का पात्र लेकर के वो साथ में गया, तो इतने में महात्मा ने अपनी हरिदास जी महाराज ने अपनी जवान को अपने उंगली से पकड़ा हुआ था और दीर्घ शंका त्याग कर रहे थे, दांतों के नीचे जवान को दबा के रखा हुआ था। तो इतने में उस बालक ने कार्य से निवृत्त होने के बाद पूछ लिया, बाबा आप जब शंका त्याग कर रहे थे तब आपने अपने दांत से जीव को दबा करके रखा था बड़ी जोर से, ऐसा क्यों? तो कहा कि जवान को ऐसी आदत पड़ी हुई है कि ये कृष्ण नाम लिए बिना रहती नहीं है। तो शास्त्र कहते हैं कि ऐसी अपवित्र अवस्था में भगवान का नाम स्मरण करना नहीं चाहिए। तो आगे चलकर बालक ने बात पूरी करते हुए कह दिया कि यदि बाबा ऐसे समय पर ही देह त्याग हो गया तो, क्योंकि उसके लिए तो नहीं कहा जा सकता है कि कहां शरीर का अंत होगा, यदि इसी बीच शरीर छूट गया तो शब्द जैसे ही बोला था तो वो हरिदास जी महाराज उस बालक के पांव के नाखून से लेकर उसके सिर तक सर्वांग को पूरा अच्छी तरह से नीचे से ऊपर ऊपर से नीचे निहारने लगे। कितनी बड़ी, क्योंकि उनके पांडित्य के आगे, उनके विद्वत्ता के आगे, उनकी उपासना के आगे अच्छे अच्छे लोग बोलने का कभी कोई साहस नहीं कर पाते थे। उनकी ऐसी भगवान की आराधना थी कि उनके सन्मुख कोई अपनी जवान खोल सके, ऐसी किसी में हिम्मत नहीं होती थी। और आज ये छोटा सा सेवक जो सेवा के कार्य में लगा हुआ है, बाबा के साथ साथ डोल रहा है और वो इनसे इतनी बड़ी बात कह जाता है। तो उन्होंने सर्वांग जब उसको निहारा देखा तो साफ साफ देख लिया कि ये ब्रजवासी बालक कोई और नहीं है, उनके ही परम आराध्य भगवान श्री कृष्ण है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। हरिदास जी चरणों में गिर गए। उन्होंने कहा, प्रभु आपसे मैंने अनजाने में ये सब कार्य करा है। भगवान कहते हैं, भक्त को मेरा कार्य करने में आनंद आता है तो मुझे भी भक्त के कार्य करने में परम आनंद की प्राप्ति होती है, मेरे से अलग नहीं। तो कहने का भाव मेरा केवल इतना था कि मैं ये कहने चाहती थी कि कब शरीर का अंत हो जाए इसके लिए कोई ठिकाना नहीं, कभी भी शरीर का कहीं भी अंत हो सकता है नारायण। इसलिए निरंतर क्रतो ओम क्रतो स्मरण, ओम का निरंतर स्मरण करें, केवल केवल ओम का स्मरण करें। बहुत से लोग कहते हैं कि भैया ओम तो केवल निवृत्ति मार्गियों को, जो साधु सन्यासी हैं, जिनको संसार से कुछ लेना देना नहीं है, उनको ओम का स्मरण करना चाहिए। जो संसारिक लोग हैं, जिनको संसार के साथ रहना है, उनको एक ओम के साथ किसी भगवान का नाम ले लेना चाहिए। परंतु मैं आपको ये कहूंगी कि ये ओम भगवान का एक ऐसा शब्द है, ब्रह्म है। ओम साक्षात प्रब्रह्म निष्प्रपंच, जो समग्र प्रपंचों से छूटना चाहते हैं, वो निष्प्रपंचता को भी प्राप्त कराता है। और जो निष्प्रपंच है, उसी से ही तो सारा प्रपंच पंचीकृत, सारा उसी से उत्पन्न है, जिसमें पंचभूत विलीन हो जाते हैं। अर्थात जो सूक्ष्म पंचीभूत शरीर है, और वह सूत्रात्मा के साथ विलीन होने पर भी जिससे समस्त उत्पन्न है, संपूर्ण जगत जिससे उत्पन्न हुआ है, जिसमें स्थित है और जिसमें लय हो जाता है, वह परमात्म स्वरूप के रूप में केवल भगवान का ओम यह अक्षर है। इसलिए ओम की जो अ उ म, इसमें त्रिगुण देवताओं का भी स्वरूप है। ओम ही ब्रह्मा है, ओम ही विष्णु है, ओम ही शिव है। अकार उकार मकार के द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश, और ये ओम स्वयं शक्ति युक्त है। ओमकार के ऊपर अर्धचंद्र और अर्धचंद्र अर्धमात्रा पर लगी हुई जो बिंदु है, वो बिंदु के समान जो निर्द्वंद है, और वो अर्धचंद्राकार रूप में जो शक्ति से युक्त है, वो शब्द ओम है। इसलिए ओम अकेला भी जपा जा सकता है, ओम के साथ किसी भगवान का नाम भी स्मरण किया जा सकता है। परंतु जो करो वो संशय रहित होकर के और बड़े प्रेम के साथ। उपनिषद कहती है जगत प्रपंच से आपको निष्प्रपंचता को प्राप्त करने के लिए निरंतर इस ओम अक्षर का हमें स्मरण करना चाहिए। क्रतो स्मरण, स्मरण करो, स्मरण करो। बोले किसका स्मरण करें? कि हे मन तू ओम का स्मरण कर। ओम कहे सब मन में ओम का संकल्प करके निरंतर इस मन को ओम के स्मरण में लगाए। मन से भगवत नाम स्मरण होना चाहिए। हे मन तू निरंतर ओम का संकल्प कर। तन में मन शिव संकल्प मस्तु। मन से हम केवल ओम को अपना करके ओम का स्मरण करें, बड़े प्रेम से स्मरण करें। और यदि स्मरण करते करते ये शरीर छूट जाएगा, तो ओम में ही हमारी, ओम को हम सूक्ष्म शरीर के द्वारा ओम को पकड़ लेंगे, तो यह जो स्थूल शरीर भस्म होने के बाद भी, स्थूल शरीर के नष्ट होने के बाद भी, वो सूतात्मा के रूप में जो कारण शरीर है, उस ओम में परमात्म तत्व में स्थिर हो जाएगा, उसमें विलीन हो जाएगा नारायण। इस प्रकार हमें पुनः संसार के इस आवागमन में बार बार जन्म लें मरें, इस संसार के इस क्रम में आना नहीं पड़ेगा। इसलिए भगवान के स्मरण की महिमा उपनिषद बताती है। इसलिए केवल एक भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए, और यही ब्रह्म है, यही सना ओम की उपासना ही करनी है। उपासना हमेशा मन से होती है, मैंने आपको कहा था। उप माने ऊपर, आसन माने नजदीक, अपना आसन अपना स्थान संसार से हटा करके भगवान के पास रखना, अपने को भगवान के सन्मुख होने का नाम ही उपासना है। मन को ईश्वर के सन्मुख लाने के लिए उपासना की जाती है। तो किसकी उपासना करनी चाहिए? बोले ओम की उपासना करनी चाहिए। और आध्यात्मिक जिज्ञासु के लिए, जो केवल आध्यात्मिक स्वरूप को प्राप्त करना चाहता है, अर्थात जो अपने स्वस्वरूप में के बोध को प्राप्त करना चाहता है उसके लिए केवल ओम का स्मरण है, ओम का ही स्मरण करे, ओम को ही अपने संकल्प में रखे, मन में रखे, मन ओम में रहे, ओम मन में रहे, इस प्रकार निरंतर सतत वो ओम का स्मरण करता रहे। और ओम का स्मरण करते हुए करतो स्मरण, अपने कर्म का स्मरण करे, अपने कर्म को करे, अर्थात क्रतो स्मरण, जो तुमने जो कर रहे हो उसका स्मरण करो, जो किया है उसका स्मरण करो, क्रतो स्मरण अर्थात उसका स्मरण करो, जो कर्म है वो तो हमें करना ही है और करते ही रहना चाहिए, परंतु कैसे करना चाहिए, ओम का स्मरण करते हुए करना चाहिए। इसीलिए यही बात बड़ी सरलता के साथ कह गई, प्रवेश की नगर कीजिए प्रवेशा हृदय राख कौशलपुर राजा, अर्थात जो भी हम कार्य करें, जहां भी हम प्रवेश करें, बोले क्या करके प्रवेश करें, भगवान का नाम स्मरण करके प्रवेश करें। तो ओम का स्मरण करते हुए कर्तव्य को करें, जो किया है उसमें भी ओम का स्मरण हो, जो करने जा रहे हैं उसमें भी हम ओम का स्मरण करते हुए करें, जो कार्य भगवान के नाम का स्मरण करके किया जाता है वो कार्य कभी अमंगल नहीं होता है। मदन मोहन मालवीय जी महाराज कहा करते थे कि मैं जब वो बीएचयू अर्थात विश्वविद्यालय का निर्माण का कार्य उनको चल रहा था और इसके लिए उन्हें बहुत सारे धन की आवश्यकता पड़ती थी, तो वो यहाँ वहाँ देश देशांतर में घूमते थे, धन इकट्ठा करते थे, तो उसके लिए वो कहते थे जब मैं घर से निकलता था भगवान का नाम नारायण 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 कहकर भगवान का नाम लेकर जिस दिन मैं निकलता था उस दिन बहुत सारा चंदा मुझे मिलता था। और मदन मोहन मालवीय जी तो कहा करते थे जब बालक जन्म ले तो उसी समय उसके मुंह में शहद से ओम अक्षर लिख दो, ताकि उसे ओम की मधुरता उसके जवान में उसी क्षण से आनी आरंभ हो जाए। तो इसलिए ओम क्रतो स्मरण, ओम स्मरणीय है, उसका हमें निरंतर स्मरण करना चाहिए, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सब कार्य को करते हुए यदि सतत स्मरण रहे तो ओम का स्मरण रहे और भगवान के नाम का स्मरण रहे। इसी इन्हीं शब्दों के साथ अभी विराम देते हैं, इस चर्चा कल करेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की।